नमस्कार भारत, तारीख 24 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। झारखंड में बनेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन बोले।
यहां का गवर्नेंस रहा जो टोटली फेल्योर रहा, राज्य का हर वर्ग परेशान रहा, यहां का नेतृत्व इसका सबसे बड़ा कारण रहा।
आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में चूक कहां गई, करेंगे विश्लेषण।
मोदी की पर्सनालिटी ऐसी हो गई और मोदी के साथ बस एक ही नेता जुड़ा है और वो है अमित शाह, और बाकी जगह वो लोग सहन करते नहीं है।
सऊदी अरब की अदालत ने सुनाई पत्रकार जमाल खाशोजी हत्या मामले में 5 लोगों को सजाए मौत।
I do not believe for one moment that the dismemberment of a body can be done in the spare of...
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी नतीजों में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को सबसे अधिक 30 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 25 सीटें, वहीं कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के तमन प्रायद्वीप और क्राइमिया को जोड़ने वाले एक रेलवे पुल की आधिकारिक शुरुआत कर दी है, लेकिन इस रेलवे पुल के उद्घाटन के साथ ही उन्हें यूरोपीय संघ की आलोचना का भी सामना करना पड़ा। यूरोपीय संघ ने रूस पर एक बार फिर यूक्रेन की संप्रभुता पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर योजना के आधार पर देखें तो साल 2020 तक इस पुल से करीब 14 मिलियन लोग और गुजरेंगे और 13 मिलियन टन का सामान इधर से उधर जाएगा। जब तक ये ब्रिज नहीं था, तब तक रूस को अपने सामान को यहां तक पहुंचाने के लिए समुद्र और वायुयान पर निर्भर रहना पड़ता था। इस क्षेत्र को रूस ने 2014 में यूक्रेन से जब्त कर लिया था। क्राइमिया पहुंचकर पुतिन ने श्रमिकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा,
Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня с вами приятное и очень важное событие.
आज सभी का दिन शुभ हो। आज का दिन और ये मौका बेहद महत्वपूर्ण है। ये क्राइमिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये पूरे रूस के लिए बहुत ही अहम है। इस पुल का सीधा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर नजर आएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने कईयों के घर तबाह कर दिए हैं और सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। रसेल स्कोल्स एक स्वयंसेवक फायर फाइटर हैं। इस आग में उनका भी घर तबाह हो गया। सिडनी के दक्षिण पश्चिम में बोलमोरल शहर से बीबीसी से उन्होंने बात करते हुए कहा,
My memory slips back to a few days ago, when a man broke down and I was holding him in my arms.
मैं जब भी सोचने बैठता हूँ, मैं उस एक पल में चला जाता हूँ जब उस शख्स को मैंने अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वो रो रहा था। वो मुझे रोते हुए बता रहा था कि उसने 70 मीटर ऊंची ऊंची लपटे देखी। ये सिर्फ एक उदाहरण है। और ऐसे में जब मुझे कोई कहता है कि पर्यावरण नीतियों में परिवर्तन करने की ज़रूरत क्यों है, तो मेरे पास यही तर्क है। हमें बतौर राष्ट्र सोचने की ज़रूरत है। रसेल स्कोल्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। म्यांमार में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन तीन साल की कथित रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिले और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबूतों के अभाव में कोर्ट ने अभियुक्तों को रिहा कर दिया है। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने अपने प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डेनिस मिलनबर्ग को उनके पद से हटा दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अब ये बेहद ज़रूरी हो गया था कि कंपनी अपने भरोसे को दोबारा से हासिल करे। पिछले साल और इसी साल मार्च में बोइंग के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और इन दोनों हादसों को ही इस फैसले की वजह माना जा रहा है। इन दोनों हादसों के बाद से ही कंपनी पर दबाव था। बोइंग 737 विमान के 2 बड़े हादसे एक दूसरे से 5 महीने के अंतराल पर हुए। इंडोनेशिया और इथोपिया में हुए इन दोनों हादसों में 346 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है। नए जनादेश के मुताबिक झारखंड में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। सबसे ज्यादा 30 सीटें जीतकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके नेतृत्व में बने कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को 81 में से 47 सीटों पर जीत हासिल हुई है। ये संख्या पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े 41 से 6 अधिक है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 25 सीटें आईं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब विपक्षी महागठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। हालांकि इस पर अभी औपचारिक मुहर लगनी बाकी है। रवि प्रकाश ने बात की हेमंत सोरेन से।
हेमंत जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपकी जीत की तीन जो प्रमुख वजहें हैं वो क्या हैं?
यहाँ का गवर्नेंस रहा जो टोटली फेल्योर रहा। आज राज्य के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज राज्य का हर वर्ग परेशान रहा और यहाँ का नेतृत्व इसका सबसे बड़ा कारण रहा।
और भाजपा की हार के क्या कारण आपको नज़र आते हैं? इसके अलावा तीन
इनके जो नीतियाँ रही हैं वो नीतियाँ बहुत इस राज्य को नुकसान पहुंचाया और लोगों को आक्रोशित करने का काम किया, जो कहीं ना कहीं एक ये बदलाव का एक बयार ये बहा।
तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जब आप सरकार बनाएंगे? तो
देखिए, ये राज्य हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के एक लंबे संघर्ष के बाद और अनेकों लोगों के शहादत के बाद ये राज्य प्राप्त हुआ। आज जिस उद्देश्य के लिए ये राज लिया गया था उन उद्देश्य को पूरा करना, और इसमें राज्य के सभी वर्ग सभी समुदाय के लोग आते हैं। आज जल जंगल जमीन की रक्षा करते हुए यहाँ के नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, किसानों की समृद्धि, बेहतर भविष्य के लिए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारे, चूँकि हमारे एक चीज़ों पर प्राथमिकता नहीं ली जा सकती, इसके लिए लंबा एक आपको दृष्टिकोण बड़ा रखना पड़ेगा और उसके साथ जन आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा।
ये जो भ्रष्टाचार के मामले आपने उठाए थे और कहा था कि रघुवर दास की सरकार पे भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, आपने बाद में मुकदमा भी कराया, ये मुकदमे अब चलेंगे? उन भ्रष्टाचार के जो मामले उनकी सरकार में, और क्या उसकी जांच होगी, क्या होगा आगे? अब
निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जो करेगा उसको सजा मिलेगा, कानून अपना कार्रवाई करेगा। और इस राज्य में एक जो शांत वातावरण बरसों सदियों से रहा है उसको कायम किया जाएगा।
हेमंत सोरेन से बात कर रहे थे रांची में हमारे सहयोगी रवि प्रकाश। झारखंड में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई और इसी के साथ एक और राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। बीजेपी की मोदी और शाह की जोड़ी के आक्रामक प्रचार के बाद भी जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड विधानसभा की कुल 81 सीटों के लिए 5 चरणों में हुए मतदान के बाद अब जनादेश आ चुका है। कल देर शाम हुई एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार बनाने का फॉर्मूला जल्दी ही तय कर लिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा,
जो राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है उस जनादेश का हम राज्य की मतदाताओं को आभार प्रकट करते हैं।
इस चुनाव में राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव हार गए हैं। उनके मंत्रिमंडल के कई और सहयोगियों को जीत नसीब नहीं हो सकी है। बीजेपी के प्रदेश प्रमुख लक्ष्मण गिलुवा भी चुनाव हार गए हैं। आखिर भाजपा को क्यों मिली ऐसी शिकस्त? राजनीतिक विश्लेषक ओम प्रकाश अस्क कहते हैं कि हार की मुख्य वजह रघुवर दास की व्यक्तिगत छवि थी।
तो सबसे पहला कि आदिवासी चेहरा लोग चाहते हैं, झारखंड के लोग गैर आदिवासी पसंद नहीं था। पिछली बार भाजपा ने रघुवर को थोप दिया था और इस बार भी जबरन वो थोपे गए थे, तो पिछली बार से ही कहीं ना कहीं मन में था झारखंड के लोगों के कि गैर आदिवासी चेहरा हम लोग को पसंद नहीं। दूसरा कि जो चुनाव हुआ उस चुनाव में स्थानीय मुद्दे भाजपा के केंद्र में रहे ही नहीं, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, जबकि विपक्ष ने पूरी तरह स्थानीय मुद्दों को, खास करके जिस जल जंगल जमीन की बात करते हैं, उन मुद्दों को लेके वो जनता के बीच गए, छोटी छोटी सभाएं की।
इस हार ने रघुवर दास के सियासी करियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्र कहते हैं कि रघुवर दास अब फिर से संगठन का काम कर सकते हैं।
मैंने उनको पूछा था कि आप हार जाइएगा तो मैंने क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि फुल टाइम ये हो गया, अब इसलिए कोई ऐसा कुछ ये है नहीं मेरे लिए कि कोई बहुत बड़ा बड़ी चीज के लिए, और बोले कि मैं पहले से ही अपने छोटे छोटे उसके संगठन के कार्य में करता रहूंगा और अगर हार जाऊंगा तो यही करूंगा, संगठन के काम करेंगे, अगर संगठन को जिम्मेवारी देता है, नहीं तो अपना जिस जगह से उनकी राजनीति शुरू हुई थी, किशोर संघ है एक जगह भालूवासा में, जिस जगह से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी, वो किशोर संघ से फिर से जुड़ के अपना, उनकी इच्छा यही थी कि मैं यही करूंगा।
झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर मानते हैं कि अब बनने वाली नई सरकार के समक्ष कई चुनौतियां होंगी।
देखिए चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, जिस तरह से सरकार ने पिछले दिनों पीडीएस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था, मनरेगा पूरी तरह कोलैप्स था, 12 शिक्षकों का जो मसला है जिस तरह से गंभीर बना हुआ है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का गंभीर बना हुआ है, किसानों की हालत खराब है, उस सब पर हम लोग को बहुत जल्द से सब निर्णय लेना होगा और उसके लिए हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके जल्द से जल्द सबका कार्रवाई शुरू करेंगे। ये सब चीज सबके जहन में है, सिर्फ हमारे ही नहीं जेएमएम के पास भी है।
बहरहाल अब यह देखना होगा कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार बनाने का दावा कब करते हैं। संभव है उनका शपथ ग्रहण क्रिसमस के बाद हो। फिलहाल रांची समेत पूरे राज्य में उनके समर्थकों में उत्साह है और लोग उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का इंतजार कर रहे हैं। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा रघुवर दास को भी बताया जा रहा है। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। कुछ ऐसा ही बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा में भी किया था, जहां गैर मराठा और गैर जाट मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन क्या बीजेपी की यही रणनीति यहां पर उल्टी पड़ गई? सुनिए गुरप्रीत सैनी की रिपोर्ट।
इससे पहले जब बीजेपी 2014 में झारखंड में जीती थी तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन सबको चौंकाते हुए बीजेपी ने एक गैर आदिवासी यानी रघुबर दास को मुख्यमंत्री बना दिया। वहां ये पहली बार था जब किसी गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2019 की तरह ही 2014 में भी झारखंड से पहले महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। हरियाणा में जीतने के बाद एक गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया और महाराष्ट्र में एक गैर मराठा को। इसके 5 साल बाद यानी अब जब दोबारा इन राज्यों में चुनाव हुए तो बीजेपी के हाथ से इन तीनों ही राज्यों की सत्ता फिसलती हुई नजर आई। हरियाणा में तो बीजेपी ने जैसे तैसे सरकार बना ली, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड में कुर्सी नहीं बचा पाई। अब कहा जा रहा है कि मोदी शाह की मुख्यमंत्री चुनने की ये रणनीति फेल होती दिख रही है। क्या सच में ऐसी कोई रणनीति थी? अगर थी तो ऐसी रणनीति क्यों बनाई गई? वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर कहते हैं,
सब जगह इनकी एक नया एक्सपेरिमेंट था। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने सोचा कि एक नॉन मराठा लीडर को वहाँ पे चार देके एक नया समीकरण बनाएंगे, लेकिन वो समीकरण विफल हुआ कि जहाँ भी डोमिनेंट कास्ट है वो एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं है। यहाँ झारखंड में आप देखिए, यहाँ पे पहली बार रघुवर दास का एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरी किया, लेकिन वो भी पहली बीजेपी के नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है, तो ये भी अपने आप में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है।
वही वरिष्ठ पत्रकार हितेंद्र राव कहते हैं कि बीजेपी ने ऐसा करके राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश की थी। हरियाणा के विषय में वो कहते हैं,
अब इन्होंने एक नॉन जाट को चीफ मिनिस्टर बना दिया तो नेचुरली जो है बहुत सारे जो नॉन जाट जो एक लीडर ढूंढ रहे थे हरियाणा अक्रॉस द पार्टी लाइन, उनको एक ये मिला कि हाँ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो नॉन जाट लीडरशिप को सपोर्ट करती है, उसे बढ़ावा देती है, तो काफी लोग बीजेपी के साथ जुड़े, इनके साथ मनोहर लाल खट्टर जी के साथ। लेकिन उसके साथ साथ जो है जो जाटों का, क्योंकि जाट जो है 25% के करीब है और काफी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है हरियाणा, उनमें जो है ये एक तरह से जो है वो जो है इनसे जो है थोड़ा सा एस्ट्रेंज होते गए, थोड़ा दूर होते गए, डिटैच होते गए बीजेपी से। उसका जो है नतीजा आपको जो है 2019 के विधानसभा इलेक्शन में देखने को मिला।
महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाली सुजाता आनंदन कहती हैं कि बीजेपी सब वर्गों को साथ लेकर नहीं चलती, इससे बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है।
जब इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को आगे किया, फडणवीस की समझ में ये बात नहीं आई कि छत्रपति शिवाजी के समय से मराठा लोग राज करते आए हैं और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे मराठा मुख्यमंत्री हुए हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुए थे या दलित मुख्यमंत्री या ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, हुए जरूर थे, लेकिन वो लोग भी सबको साथ लेकर के चले थे उस वक्त।
सुजाता आनंदन कहती है कि बीजेपी का नेतृत्व खुद भी राज्यों में किसी प्रभावशाली नेता को उभरने नहीं देना चाहता और ऐसा करके बीजेपी वही गलती कर रही है जो कभी कांग्रेस ने की थी।
यू नो तो हर जगह उनका हाल बुरा हुआ क्योंकि उन्होंने स्टेट में लीडर बनने नहीं दिया। आज बीजेपी यही कर रही है। आज मोदी की पर्सनालिटी ऐसी हो गई और मोदी के साथ बस एक ही नेता जुड़ा है और वो है अमित शाह और बाकी जगह वो लोग सहन करते नहीं है।
वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं जो नहीं होना चाहिए। चुनाव अभियान राज्यों के नेताओं के हाथ में होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। गुरप्रीत सैनी, बीबीसी दिल्ली।
सऊदी अरब की एक अदालत ने पत्रकार जमाल खाशोजी हत्या के मामले में 5 लोगों को सजाए मौत सुनाई है। खाशोजी को आखिरी बार 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर देखा गया था। तुर्की ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया था कि दूतावास में खाशोजी की हत्या कर दी गई थी लेकिन उनकी लाश नहीं मिली। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए भूमिका राय से।
सऊदी अरब के सरकारी अभियोजक शलान अल शलान ने बताया कि इस मामले में उन 5 लोगों को मौत की सजा दी गई है जो सीधे तौर पर हत्या में शामिल थे। साथ ही 3 लोगों को कुल मिलाकर 24 साल की जेल दी गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सलाहकार सऊद अल खतानी से पूछताछ की गई थी लेकिन उन पर किसी तरह के आरोप नहीं लगाए गए हैं। हालांकि इस फैसले की आलोचना भी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की दूत और इस मामले की पड़ताल करने वाली एग्नेस कॉलमार्ड ने अदालत के इस फैसले को न्याय का मजाक उड़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा,
I do not believe for one moment that the dismemberment of a body can be done in the spur of the moment.
जिन लोगों ने उन्हें मारा उन्हें सजा दी गई लेकिन इस पूरी घटना के पीछे जिनका दिमाग था जो मास्टरमाइंड थे उन्हें छोड़ दिया गया। इसके साथ ही रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के सेक्रेटरी जनरल क्रिस्टोफ डेलॉयर ने भी इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा,
On peut pas se réjouir d'un tel résultat alors que l'enquête a été manifestement bâclée.
हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। जब इस मामले की जांच में ही ढिलाई दिखाई गई, सुनवाई में ढुलमुल रवैया रखा गया, सुनवाई बेहद गुप्त तरीके से की गई, पता ही नहीं चला कि किसने क्या कहा और क्या नहीं कहा, ना ही ये पता चला कि क्या सबूत रखे गए। संक्षेप में कहूं तो आज दोषियों को सजा सुनाई गई है, कुछ को बरी कर दिया गया है और ये सब कुछ विवेकाधीन है। खाशोजी को आखिरी बार 2 अक्टूबर साल 2018 को तुर्की के इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्यिक दूतावास के बाहर देखा गया था। तुर्की ने सऊदी अरब पर आरोप लगाया था कि दूतावास में जमाल खाशोजी की हत्या कर दी गई थी लेकिन उनकी लाश नहीं मिली। तुर्की का आरोप था कि सऊदी आला अधिकारियों के आदेश पर खाशोजी की हत्या की गई है। हालांकि सऊदी अरब इससे इनकार करता रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस हत्या की कड़ी आलोचना हुई। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA और पश्चिमी देशों की सरकारों ने कहा था कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ही खाशोजी की हत्या का आदेश दिया था लेकिन सऊदी के अधिकारी इस बात से इनकार करते रहे थे कि इसमें उनकी कोई भूमिका थी। सितंबर में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सार्वजनिक तौर पर जमाल खाशोजी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि उनके रहते ही हत्या को अंजाम दिया गया, इस कारण वो इस हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं।
सऊदी अरब की अदालत ने पत्रकार खाशोजी की हत्या के मामले में 5 लोगों को सजाए मौत सुनाई। भारत में नए नागरिकता संशोधन कानून का देश के कई हिस्सों में जोरदार विरोध हो रहा है लेकिन बीजेपी अब इस कानून के समर्थन में सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी ने कानून के समर्थन में देश भर में रैलियां करने का फैसला किया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल इस अभियान की शुरुआत पश्चिम बंगाल के कोलकाता से की। बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी ने बात की कोलकाता में मौजूद हमारे सहयोगी पीएम तिवारी से।
बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर जो शीर्ष राज्य है उनमें शामिल है। इसकी कई वजह है। पहली वजह यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा करने के बाद पर अब उसकी चाहे बंगाल पर थी और बंगाल में लोकसभा चुनाव में उसे भारी कामयाबी मिली थी। इस साल मई में 2 सीटों से वो बढ़ के 18 सीटों तक पहुंच गई थी तो इसके बाद उसकी निगाहें अब मई में अगले साल जो 100 से ज्यादा नगर निगमों और स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं उस पर हैं और उसके बाद 2021 मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव तो सेमीफाइनल थे, असली फाइनल तो विधानसभा चुनाव है, इसलिए वह खास ध्यान दे रही है पश्चिम बंगाल पर कि यहाँ उसका मकसद 2021 में चुनाव जीतकर ममता को हटाकर सत्ता पर काबिज होना है।
पश्चिम बंगाल में विपक्ष की जो जगह थी जिस पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हुआ करती थी, तो क्या बीजेपी ने पूरी तरह से वो जगह ले ली है?
ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने विपक्ष की जगह ले ली है। लेफ्ट का नाम लेवा नहीं बचा, लोकसभा चुनाव में उसका खाता तक नहीं खुल पाया था और कांग्रेस भी हाशिए पर है, महज 4 सीटें उसके पास है। तो बीजेपी धीरे धीरे सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर उभर गई है और वह अब खुद आगे अपने पैरों तले की जमीन को मजबूत करना चाहती है। इसलिए सीएए के समर्थन में उसने सोमवार को कोलकाता में एक विशाल रैली की थी जिसे कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे नेताओं ने भी संबोधित किया था और उनके निशाने पर अब सीधे तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी।
सोमवार को जो ये रैली की जेपी नड्डा ने, बीजेपी के जो बड़े नेता है, कोलकाता के लोग थे, उनकी कैसी प्रतिक्रिया मिली? क्या उससे लग रहा है कि जो बीजेपी की कोशिश है पकड़ मजबूत करने की, वहाँ वो उन्हें लग रहा है ऐसा कि कुछ हो पाएगा?
बीजेपी के नेता तो काफी उत्साहित हैं और नड्डा ने अपने भाषण में कहा भी कि इतनी भारी भीड़ से साफ है कि लोगों ने सीएए और नागरिकता कानून को मंजूर कर लिया है और ममता बनर्जी को नकार दिया है। और ममता बनर्जी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही हैं, अब उनको भी समझ लेना चाहिए इस भीड़ से कि लोगों ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स को नकार दिया है। लेकिन जहां तक रैली में भीड़ का सवाल है, भीड़ तो पार्टी के कार्यकर्ताओं की थी, बीजेपी समर्थकों की थी और पूरे राज्य से इस रैली के लिए भीड़ जुटाई गई थी। आम लोगों में अभी इसकी प्रतिक्रिया नहीं है। आम लोगों में तो जहां तक है नागरिकता कानून को लेकर आतंक है और इस बीच ममता लगातार कहती रही है न एनआरसी लागू होने देंगे और न नागरिकता कानून। और इधर सोमवार को ही कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को निर्देश दिया कि जो विज्ञापन चला रही हैं नागरिकता कानून को लेकर उनको तुरंत बंद कर दिया जाए। तो
नागरिकता कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रही है। कार्यक्रम में अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। अखबार आज क्या कह रहे हैं भूमिका?
मोहनलाल जी, हर अखबार के पहले पन्ने पर झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं और मेरे हाथ में दैनिक जागरण है जिसने हेडलाइन लगाई है, भाजपा के हाथ से झारखंड भी फिसला। और आपके पास भी मुझे दिख रहा है हिंदुस्तान अखबार, जिसमें लिखा है झारखंड भाजपा के हाथ से निकला। लगभग मिलती जुलती हेडलाइंस हैं हर अखबार की और जिससे बोले लबो लो आप, यही है कि झारखंड बीजेपी के हाथ से निकला।
लेकिन इन अखबारों ने, बहुत सारे अखबारों ने एक तस्वीर प्रकाशित की है जिसमें कि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के सामने बैठे हुए हैं और हेमंत सोरेन का जो लड़का है वो साइकिल पे बैठा हुआ है और हेमंत सोरेन साइकिल चला रहे हैं। ये 2-3 अखबारों में ये तस्वीर छपी है
जी।
इसके अलावा एक चीज और भी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारों के काम की समीक्षा करेगी, ये हिंदुस्तान में छपा है
जी। और कई लोग बोल रहे हैं कि झारखंड का जो नतीजा आया, इससे पहले महाराष्ट्र में जो नतीजे आए थे दोनों जगह विधानसभा चुनाव में, इसे देखते हुए अब ये बहुत अहम भी हो चुका है। आपने तस्वीर का जिक्र किया था, मैं एक और तस्वीर का जिक्र करना चाहूंगी। राजघाट पर कांग्रेस ने कल धरना प्रदर्शन किया था और वहां से एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर आई थी जिसमें राहुल गांधी सोनिया गांधी को शॉल ओढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ये लगभग हर अखबार में ये तस्वीर ली गई है। अब दूसरी खबरों की अगर बात करें तो नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण रहे, कई जगह हिंसक रूप लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में अकेले 10 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि पुलिस के मुताबिक, राज्य पुलिस के मुताबिक, इन सारे हिंसक प्रदर्शनों के पीछे सिमी से जुड़े संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ था।
ये पुलिस का दावा है
और उन्होंने कहा है कि उन लोगों ने फंड भी इकट्ठा किया था और जहां जहां जैसे शामली और मुजफ्फरनगर का नाम भी स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया कि इन जगहों पर फंडिंग भी की गई थी हिंसा के लिए। लखनऊ से ही दूसरी खबर यह है कि सदफ जाफर, यानी जो कांग्रेस के नेता हैं और एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। उन्हें 19 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में एक प्रदर्शन था, उस दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और एक अच्छी खबर आपको सुनाते चलूं कि खाप पंचायत जो है जिंद में, जो एक खाप पंचायत है, अब उसने ये कह दिया है कि अब हम किसी भी तरह के अंतर जातीय विवाह का विरोध नहीं करेंगे। तो ये अक्सर खाप पंचायतों का जिक्र जब हम करते हैं तो बड़े ही सख्त फैसलों के लिए आता है, लेकिन ये एक बेहतरीन खबर है। और एक चिंता में डालने वाली भी खबर आपको देते चलूं कि अगर भारत में जो सड़क हादसे होते हैं उनमें सबसे अधिक जिनकी मौत होती है वो युवा होते हैं। साल 2017 के आंकड़ों के आधार पर कहा गया है कि साल 2017 में करीब 2.2 लाख लोगों की सड़क हादसे में जान गए, जिसमें सबसे ज़्यादा मरने वाले जो 15 से 39 साल के बीच के लोग थे वो युवा थे और इनकी सड़क हादसे में जान गई।
बहुत बहुत शुक्रिया भूमिका। और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं कि 28 दिसंबर की सुबह से बीबीसी का ये सुबह का जो प्रसारण है नमस्कार भारत कार्यक्रम, वो बंद हो रहा है। और इस बारे में हमारे पास लगातार ढेरों चिट्ठियां आ रही हैं। इनमें से आज कुछ चिट्ठियां पढ़ रहे हैं बीबीसी हिंदी के संपादक मुकेश शर्मा।
बीबीसी हिंदी की रेडियो सेवा बंद करने की जब से खबर आई है तब से लगातार श्रोता हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं और अपनी भावनाओं से अवगत करा रहे हैं। अपने सुबह के कार्यक्रम में इन दिनों हम उनमें से कुछ चिट्ठियां लेकर आपके बीच आते हैं और उसी में से आज पहली चिट्ठी मेरे पास है ब्रज किशोर सिंह जी की। वो लिखते हैं कि महोदय, जब से मैंने सुना है कि बीबीसी हिंदी का प्रसारण बंद होने जा रहा है तब से मैं काफ़ी परेशान हूँ। बीबीसी हिंदी मैं 1986 से सुनता आ रहा हूँ और जैसे इसकी आदत पड़ गई है, जिस दिन किसी कारण से सुन नहीं पाता लगता है जैसे कुछ खो गया है। इसी तरह अबोहर पंजाब से अमरीक सिंह संधु लिखते हैं कि जब से बीबीसी हिंदी की इस रेडियो प्रसारण सेवा को बंद करने की खबर उन्होंने सुनी है वो काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने लिखा है कि वो एक नेत्रहीन व्यक्ति हैं और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित के लेक्चरर हैं। उन्होंने कहा है कि वो 1975 से लगातार बीबीसी हिंदी की सेवा सुनते आ रहे हैं और अब उनका जो बेटा है यानी उनके पुत्र भी अब इंटरनेट के ज़रिए ये बीबीसी हिंदी का प्रसारण सुनते हैं। इसी तरह चुन्नीलाल रावला मंडी ज़िला गंगानगर राजस्थान से लिखते हैं कि बीबीसी वो 9वीं कक्षा से सुनते आ रहे हैं और अब तो सरकारी अध्यापक बन चुके हैं। मुर्तज़ा लिखते हैं कि आज के समय में जिस तरह की एक तटस्थ और पारदर्शी पत्रकारिता की ज़रूरत है वो बीबीसी हिंदी से उन्हें मिलती है, इसलिए इसे बंद ना किया जाए। साथ ही चुरू राजस्थान से रामकिशन अडिक का पत्र है जिसमें वो कहते हैं कि प्रिय बीबीसी हिंदी सेवा, जब कक्षा 10 में था तब से बीबीसी हिंदी का प्रसारण सुन रहा हूँ, यानी कि ज़िंदगी के 52 में से 37 साल बीबीसी से जुड़े रहे हैं। विशेषतः सुबह की शुरुआत तो बीबीसी के समाचारों से अपडेट होकर ही होती है, भले ही रेडियो पर सुनूं या इंटरनेट पर। आपके पत्र हमें मिल रहे हैं और वो इसी तरीके से आपकी भावनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।
मुकेश शर्मा आपकी चिट्ठियां पढ़ रहे थे। और अब कार्यक्रम के आखिर में खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह और आज सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कराची में खेला टेस्ट मैच जीत लिया है। उसने इस मैच में श्रीलंका को 263 रनों के बड़े अंतर से हराया है। ये सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच था, पहला मैच ड्रॉ रहा था। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की है। इस मैच में पाकिस्तान के 4 बल्लेबाजों ने शतक जमाए, लेकिन सबसे अधिक चर्चा युवा गेंदबाज नसीम शाह ने बटोरी है। शाह ने मैच की अंतिम पारी में 31 रन देकर 5 विकेट झटके। इसके साथ ही वो टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाले सबसे युवा तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। उन्होंने कराची के नेशनल स्टेडियम में सोमवार को ये उपलब्धि हासिल की। नसीम शाह ने टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लेने की उपलब्धि 16 साल और 307 दिन की उम्र में हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ही देश के मोहम्मद आमिर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत के मेराबा लुवांग ने अपनी शीर्ष वरीयता के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश जूनियर इंटरनेशनल सीरीज 2019 का खिताब अपने नाम किया है। इस तरह उन्होंने 2 महीनों में दूसरी ट्रॉफी जीती है। उन्होंने पिछले महीने वोन जियोन यूनेक्स कोरिया जूनियर ओपन इंटरनेशनल चैलेंज में लड़कों का एकल अंडर 19 खिताब जीता था। शीर्ष वरिया मायराबा ने 48 मिनटों में जीत हासिल की। मणिपुर के इस खिलाड़ी ने केन योंग ओंग को 21-14, 21-18 से शिकस्त दी। खेल समाचारों में आज इतना ही।
और कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। झारखंड विधानसभा के 81 सीटों के लिए हुए चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। बहुमत के लिए 41 सीटों की जरूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को सबसे अधिक 30 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 25 सीटें और कांग्रेस को 16 सीटें। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने कईयों के घर तबाह किए हैं। फायर फाइटर रसेल स्कोल्स ने कहा है कि अगर पर्यावरण को लेकर हम अब भी सचेत नहीं हुए तो कुछ भी नहीं बचेगा। म्यांमार में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। ये विरोध प्रदर्शन 3 साल की कथित रेप पीड़ित बच्ची की पहचान उजागर करने के लिए किया गया। विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेनिस मिलनबर्ग को उनके पद से हटा दिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की सुबह की सभा यानी कि नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे शाम को दिन भर कार्यक्रम में यानी कि 7:30 बजे मुलाकात होगी। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।